نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، لا حول ولا قوة إلا بالله. کسی بھی نیکی کے کرنے کی توفیق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہی انسان کو ملتی ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو نیکیاں چھوٹی موٹی ہم سے ہوتی ہیں وہ قبول فرمائے، اور ہمیں بڑی بڑی نیکیوں کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری زندگی میں جو بڑے سے بڑا موقع آئے کہ جس میں کچھ کر کے ہم بھی صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلیں، اس وقت کہیں ہم مجبوریوں کی نظر نہ ہو جائیں، اور اس وقت کہیں ہم پیچھے نہ رہ جائیں. رہی کو مختوم میں سے غزوہ تبوک اور اس سے پیچھے رہنے والوں پہ بات ہو رہی ہے، اور ہم اس میں دیکھ رہے ہیں کہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی حکمت تھی. آپ نے مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف طرح کا معاملہ کیا، اور قرآن پاک میں غزوہ تبوک کے بارے میں مختلف جو آیات آئیں اس میں اکثر صورت توبہ میں آئیں. جی، لاسٹ سیشن میں ہم نے کیا تھا، حج، جو فتح مکہ کے بعد کا پہلا حج تھا. یاد رکھیے، ایک حج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا تھا وہ آگے آئے گا. تو اب آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، پیج نمبر 593 سے غزوات پر ایک نظر. بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہے. آپ کہہ لیجئے بدر سے تبوک تک ایک الگ سیشن میں بھی ہم کر چکے ہیں، اسی طرح محسن انسانیت کے دوران جنت تلواروں کی چھاؤں میں. آج ہم یہاں دیکھیں گے کہ آپ کے جو مختلف غزوات تھے وہ کیا تھے، اور آپ اپنی یوتھ کو یہ باتیں ضرور سنوائیے، کیونکہ آج پروپیگنڈا یہی ہے کہ اللہ کے نبی نے شاید تلوار کے ذریعے سے ملکوں کے ملک فتح کیے. شروع کرتے غزوہ تبوک کے بعد. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ چونکہ یہ آخری غزوہ تھا آپ کی زندگی کا، تو مختلف غزوات جو آپ کے زندگی میں ہوئے وہ کیوں تھے، مقاصد کیا تھے. کتاب کے اعتبار سے پیج نمبر 593، غزوات پر ایک نظر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات، سرایا اور فوجی مہمات، تین چیزیں ہیں. غزوات غزوات ان کی جمع، وہ جنگ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے، یعنی بڑی جنگ کو کہتے ہیں. سرایا سریت ان کی جمع، جس میں خود تو نہیں گئے لیکن دوسروں کو بھیجا. اور بعض دفعہ بڑی بڑی جنگیں بھی سرایا ہی تھیں لیکن اس میں آپ نفس نفیس خود موجود نہیں تھے. اور فوجی مہمات، چھوٹے چھوٹے لشکر جو کچھ لوگوں کو گروہ بنا کر کسی ایک ہی عمارت میں بھیج دیے جاتے تھے. ان سب پر ایک نظر ڈالنے کے بعد کوئی بھی شخص جو جنگ کے ماحول، پس منظر اور اسی طرح سے پیش منظر، پس منظر ہوتا ہے بیک گراؤنڈ، اور پیش منظر ہے جو اس کے آفٹر ایفیکٹس ہوتے ہیں، اور آثار اور نتائج کا علم رکھتا ہو. آثار جو اثر چھوڑے جنگوں نے، اور نتائج جو کہ ان کے ریزلٹس تھے. مراد یہ کہ جس کو تھوڑی بہت سمجھ ہو اس بات کی کہ یہ کیا طور طریقے ہیں اور کس طرح سے ہوتا ہے. یہ اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے اور باکمال فوجی کمانڈر تھے. آپ کی سوجھ بوجھ سب سے زیادہ درست، اور آپ کی فراست اور بیدار مغزی سب سے زیادہ گہری تھی، یعنی کہ ہی واز اے ویری سینسفل جرنیل اینڈ لیڈر. آپ جس طرح نبوت اور رسالت کے اوصاف یعنی وصف میں سید الرسل اور اعظم الانبیاء تھے، اسی طرح فوجی قیادت کے وصف میں بھی آپ اپنی مثال آپ تھے، یعنی یگانہ روزگار، مراد یہ کہ جو کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو، آپ یہ سمجھ لیجئے. اور نادر عبقریت کے مالک تھے. نادر عبقریت کہہ لیجئے یونیک تھے. اردو مشکل ہے، میں کوشش کروں گی نیکسٹ ٹائم کہ لفظ ہی آسان بولوں، تو آپ خود ہی سمجھ جائے گا کہ بک میں جو لکھا ہے اس کا آسان ترجمہ یہ ہے. آپ نے جو بھی مارکہ آرائی کی اس کے لیے ایسے حالات اور جہاد، یعنی جہد سے مراد ہے کہ کس طرف جانا ہے، یعنی ایسے حالات اور ایسی جگہوں کا انتخاب فرمایا جو حزم و تدبر اور حکمت و شجاعت کے عین مطابق تھے. مراد یہ کہ اللہ کے نبی ایسے ہی نہیں اٹھ کر گئے، یا آپ نے کبھی بھی کسی جگہ اپنے ساتھیوں کو ایسے نہیں بھیجا، بلکہ آپ پہلے سے حالات کی نبض دیکھ لیا کرتے تھے. اس سے ایک بہت ہی خوبصورت لیڈرشپ کا نقطہ ہے. کام کی جہاں بھی ضرورت ہو وہاں بھیجنا چاہیے، خود جانا ہے تو خود جائیے، آپ کے بغیر کام ہو سکتا ہے ساتھی ہی جا کے وہ کام کر لیں تو وہاں ان کو بھیجنا چاہیے، اور جہاں بھی تھوڑے تھوڑے چھوٹے چھوٹے گروپس کی ضرورت ہے وہاں بہت بڑی کوششیں کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. کسی مارکے میں حکمت عملی، لشکر کی ترتیب اور حساس، यानी सेंसिटिव, मराकिस पर इसको मुतय्यन करना यानी वहाँ लोगों को नॉमिनेट करना, लोगों की जॉब्स असाइन करना, उनकी लोकेशंस, उनकी पोजीशंस को असाइन करना, मौजू तरीन मुकाम जंग का इंतखाब यानी किस जगह को मैदान जंग बनाया जाए, जैसे बदर के बारे में आप जानते हैं कि कुएं को चूज़ किया गया था, और भी जंगों में आता है कि अल्लाह के नबी का ख्याल किसी और तरफ का था लेकिन सहाबी के मशवरे से आपने मुकाम बदल दिया। ये बिल्कुल ऐसे ही कि आप दर्स के लिए जाएं तो कहाँ करें दर्स, कहाँ ना करें, फिर जाने के बाद रूम में कौन किधर बैठे, स्पीकर की चेयर किस तरफ हो, ये वगैरह। ये बहुत अहम काम है, यानी ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट से मुतल्लिक हैं। अल्लाह के नबी को ये भी आती थी। याद रखिए कि सिर्फ तलवार चलाने का नाम दीन नहीं है, तलवार चलेगी तो अपने ऊपर भी चल जाएगी, असल चीज़ प्लानिंग है। मैंने जो ज़िंदगी को सीखा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के इतने मुख्तलिफ एंगल से सीखा कि एक्सपर्टीज़ बहुत ज़्यादा नहीं भी होना, लेकिन बेस्ट मैनेजमेंट उस चीज़ को खूबसूरत कर देती है। मसला अगर माहौल अच्छा बना दिया जाए, जगह सही चूज़ की जाए, सही दिन चूज़ किया जाए, उस दिन कुछ और ना हो, टाइम ठीक हो, लोगों के मुताबिकत का हो, तो आम सी बात भी वहाँ बहुत फ़ायदा दे देती है। तो मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन टू बी अ गुड टीचर, ये आप कह सकते हैं। क्योंकि आपकी तो जंगें थी और आपने पीछे सूरह आल इमरान में भी पढ़ा है ना कि क्या आप मोमिनों की जगह मुकर्रर कर रहे थे, तो अल्लाह के नबी इतना ज़्यादा अपने काम के अंदर इन्वॉल्व थे कि छोटी छोटी चीज़ का ख्याल रखते थे। तो क्या पता चला कि जंग के इंतखाब और जंगी प्लानिंग वगैरह में आपसे कभी कोई चूक नहीं हुई, यानी आपने कोई रॉन्ग डिसीजन नहीं लिया, इसीलिए इस बुनियाद पर आपको कभी कोई जिक नहीं उठानी पड़ी, ये भी नोट कीजिए। यानी थोड़ी सी भगदड़ जो उहद में मची, उसके अलावा आपको कभी भी शिकस्त नहीं हुई। तो एक तो हम मानते हैं कि अल्लाह की मदद थी, और ऑफ कोर्स कि अल्लाह की मदद तो थी ही, वो तो पहली चीज़ है, लेकिन आपकी प्लानिंग भी थी। इससे पता चलता है कुछ लोग होते हैं जिधर हाथ डालते हैं वो सोना बनने लगती है, जहाँ जाते हैं वहाँ अल्लाह उनसे कुछ ले लेता है। वजह क्या है कि वो प्लान ठीक तरीके से करते हैं, और कई दफ़ा जहाँ नाकामियाँ होती हैं उसके पीछे मिस प्लानिंग और मिस मैनेजमेंट भी होती है। बल्कि इन तमाम जंगी मामलात और मसाइल के सिलसिले में आपने अपने अमली इकदाम से साबित कर दिया कि दुनिया बड़े बड़े कमांडरों के ताल्लुक से जिस तरह की क्यादत का इल्म रखती है, आप इससे बहुत कुछ मुख्तलिफ एक निराली किस्म की कमांडराना सलाहियत के मालिक थे, जिसके साथ शिकस्त का कोई सवाल ही ना था। इस मौके पर यह अर्ज़ कर देना भी ज़रूरी है कि उहद और हुनैन में जो कुछ पेश आया, इसका सबब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी हिकमत अमली की खामी न थी, बल्कि इसके पीछे हुनैन में कुछ अफराद लश्कर की बास कमज़ोरियाँ कार फरमा थी, और उहद में आपकी नहायत अहम हिकमत अमली और लाजमी हिदायात को नहायत फ़ैसला कुन लम्हात में नज़रअंदाज कर दिया गया था। बड़ा अहम नुक्ता है, इसको नोट कीजिएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अल्लाह ताला की एक ताईद हासिल थी, और आज भी ये हर उस इंसान को होगी जो अपने मकसद के साथ सच्चा होगा और जिसकी काम करने का तरीका ठीक होगा, नियत भी ठीक होगी। नियत लोगों को नहीं दिखती, तरीके लोगों को दिखते हैं, और नियतों पे अल्लाह ताला की नज़र है। आज के भी इस गए गुजरे दौर में मुसलमानों को अल्लाह ने ये दो ऐसी नेमतें दी हैं कि अगर वो इसका भरपूर तरीके से इस्तेमाल करें तो फरिश्ते आए ना आए, लेकिन अल्लाह ताला की मदद किसी न किसी रंग में ज़रूर आएगी। और दूसरी बात क्या पता चली कि लीडर की छोटी सी नाफरमानी जीती हुई जंग को शिकस्त में बदल देती है। तो समेना व ताना, समा व बसर या समा व तात, ये जंगों में भी ज़रूरी है और ज़िंदगी के हर फील्ड में। फिर इन दोनों गज़बात में जब मुसलमानों को शिकस्त उठाने की नौबत आई या नुकसान पहुंचा, तो आपने जिस बहादुरी का मुजाहरा किया यानी अबकरियत, वो अपनी मिसाल आप थी। आप दुश्मन के मद्दे मुकाबिल डटे रहे और अपनी नादराए रोज़गार हिकमत अमली से इसे या तो इसके मकसद में नाकाम बना दिया जैसा कि उहद में हुआ, या जंग का पासा इस तरह पलट दिया कि मुसलमानों की शिकस्त फतह में तब्दील हो गई जैसा कि हुनैन में हुआ। नोट कीजिए इस जुमले को। लीडरशिप क्वालिटीज़ में है कि आपको खुद काम करना आता हो। कभी कभी इंसान एक ऐसी गर्दाब में फंस जाता है कि कोई भी हेल्प आउट नहीं कर सकता, तो उस वक्त लीडर खुद उस जगह पहुंच कर वो काम कर ले। आपको सीना नहीं आता तो अच्छा सिलवा नहीं सकते आप, आपको अगर पकाना नहीं आता तो आप अच्छा पकवा नहीं सकते, ये फितरत का असूल है। तो लीडरशिप क्वालिटीज़ में कम से कम हर चीज़ का बेसिक नॉलेज होना लाजमी है, ये बात है इसमें सीखने की। और दो तरह से आपने जितवाया, एक तो दुश्मन को उसके मकसद में नाकाम किया, और दूसरा ये है कि शिकस्त फतह में बदल गई। दोनों चीज़ें ओहद और हुनैन में देखी गई। हालांकि ओहद जैसी खतरनाक सूरत हाल और हुनैन जैसी बेलगाम भगदड़ सिपा सालारों की कुव्वत फैसला सल्ब कर लेती है और इनके असाब पर इतना बदतरीन असर डालती है कि इन्हें अपने बचाव के अलावा और कोई फिक्र नहीं रह जाती। नोट कीजिएगा, आयरन नर्व्स एक तो चीज़ है लीडरशिप के साथ, दूसरी बात यह कि रिलैक्स्ड। जो बंदा खुद घबरा जाता है और हौलने लगता है वो दूसरों को भी घबराएगा, उनको भी हौलाएगा। रिलैक्स्ड, फिर क्या हुआ, आप तो हैं ना, फिर क्या, सब चला जाए, अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लाम तो है ना। यानी ये वो लीडरशिप क्वालिटी है कि जो वाकई एक अदना से सिपाही को कमांडर बना सकती है। और वो क्या, सेल्फ कंट्रोल, बड़ी से बड़ी मुश्किल में, एमरजेंसी हालात में भी इंसान खड़ा रहे। वो है कि आप कह सकते हैं कि रिस्क टेकर भी होना है और रिलैक्स भी रहना है। ये गुफ्तगू तो इन गजबात के खालिज फौजी और जंगी पहलू से थी, बाकी रहे दूसरे गोशे तो वो भी बेहद अहम है। आपने इन गजबात के जरिए अमन अमान कायम किया, फितने की आग बुझाई, इस्लाम और बुत परस्ती की कशमकश में दुश्मन की शौकत तोड़ कर रख दी और इन्हें इस्लामी दावत तबलीग की राह हजात छोड़ने और मुसालहत करने पर मजबूर कर दिया। इसी तरह आपने इन जंगों की बदौलत ये भी मालूम कर लिया कि आपका साथ देने वालों में से कौन से लोग मुखलिस हैं और कौन से लोग मुनाफिक। जो दिल के अंदर यानी नखा खाना दिल यानी दिल के खानों में छुपाई हुई चीज़ों में गदर और खयानत के जज्बात छुपाए हुए हैं, इसको भी नोट कीजिएगा। जंगों का और आज के दौर में कह लीजिए कि मुख्तलिफ मराहल का, प्रोजेक्ट्स का, कुछ चैलेंजेस का, जब दीन के नाम पे वो हमारे सामने आए तो एक बहुत बड़ा मकसद मुनाफिक और मुखलिस को अलग करना है। कभी अपने छाछ में डालकर गंदम को छाड़ा होगा, ऐसे छाड़े तो आगे आगे सब पत्थर आ जाते हैं, पीछे गंदम है। जैसे छाछ में डलना एक किस्म की आजमाइश है ना, गंदम तो कहेगी क्या हो गया, मैं सब हिला रहे हैं, जुलजिलु जिलजालन शदीदा, लेकिन आप देखिए कि सही अनाज अलग हो रहा होता है और जो अंदर भूसी और वो बाकी चीज़ें अलग हो रही होती हैं। तो ये जो मुश्किल आती है ना, चाहे मुसलमानों पे इज्तमाही तौर पे या इनफरादी तौर पे या किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई मसला आ जाए, ये आपके खरे खोटे को अलग कर देती हैं। बहुत दुआ किया करें, क्योंकि खोट कहीं ना कहीं जाकर ज़रूर निकलेगा, या आपको निकाल देगा उस जगह से या आपके दिल से खोट निकल जाएगा। तो बेहतर है कि इसको दुनिया में ही पीछे ही रख ले इंसान, कुछ भी ना हुआ तो आखिरत में जाकर तो निकलेगा। जब आप किसी कॉज से संजीदा नहीं रहते या बाहर कुछ और अंदर खाते कुछ और, छोटे मोटे कह लीजिए कि मकासिद ही क्यों ना हो, तो अल्लाह ताला उसको खोल देता है। फिर आपने महाजराई के अमली नमूनों के ज़रिए मुसलमान कमांडरों की एक ज़बरदस्त जमात भी तैयार कर दी, जिन्होंने आपके बाद इराक़ और शाम के मैदानों में फारिस और रूम से टक्कर ली और जंगी प्लानिंग और टेक्निक में इनके बड़े बड़े कमांडरों को शिकस्त देकर इन्हें इनके मकानात और सरजमीन से, अम्वाल और बागात से, चश्मों और खेतों से, आरामदेह और बाइज्जत मुकाम से और मज़ेदार नेमतों से निकाल बाहर किया। कुरान की आयत ही का कह लीजिए ये तर्जमा है कि कैसे घर पड़े रहे और लोग निकल कर चले गए, कौमें फिरौनियों की तरफ इशारा है। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन गज़बात की बदौलत मुसलमानों के लिए रिहाइश, खेती, पेशे और काम का इंतज़ाम किया। बेघरों और मुख्ताज बनागजीनों यानी वो लोग जो हैंड टू माउथ थे, इनके मसाइल हल फरमाए, हथियार यानी वेपन्स, घोड़े, साजो सामान और जंग के अखराजात मुहैया किए, और ये सब कुछ अल्लाह के बंदों पर ज़रा बराबर जुल्म ज़्यादती और जोरो जफा यानी गुनाह करना या बेवफाई करना इसके बगैर हासिल किया। सारी बात का जो अभी तक यहाँ तक हुई उसका खुलासा क्या है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बड़े कमांडर थे। आप मौका देख कर बात करते थे और ना सिर्फ ये कि आपने खुद अपनी ज़िंदगी में हर जंग जीती, बल्कि बाद में एक ऐसा गिरोह छोड़ा अपने साथियों का कि जिन्होंने आपके बाद फिर इस्लाम के लिए तन मन धन लगाया और फिर उसमें से जो खोटे थे वो तो निकल गए। नबी सल्लम की वफ़ात की खबर के साथ ही क्या हुआ था ये माने वाले अगले सबकों में पढ़ेंगे। लेकिन जो किसी कॉज के साथ मुखलिस होते हैं ना, वो कभी नहीं पीछे होते। उनके ऊपर से रोलर कोस्टर्स भी गुजर जाएं, नर्व्स भी ब्रेक हो जाएं, वो कहते हैं कोई बात नहीं, इधर जान दे देंगे। देखिए वरना तो बंदा मैदान जंग से भाग है कि मैं क्यों मरूं। बहुत सारी चीज़ें हैं इनमें सीखने की, लेकिन जो बात समझ आने वाली वो क्या कि अंदर से दिल के साथ किसी चीज़ के साथ संजीदगी से साथ जुड़े हुए लोग कभी पीछे नहीं होते। फिर आपने महाजराई के अमली नमूनों के ज़रिए मुसलमान कमांडरों की जमात तैयार की, जिन्होंने आपके इराक़ और शाम के मैदान में फारिस और रूम से टक्कर ली, यानी उस वक्त की सुपर पावर्स, और जंगी प्लानिंग और टेक्निक में बड़े बड़े कमांडर से आप पढ़िए हिस्ट्री, कैसे सब कुछ उधर से निकल गया। फिर क्या हुआ कि अल्लाह के नबी ने इन गजबात की बदौलत मुसलमानों के लिए रिहाइश, खेती, पेशे और काम का इंतज़ाम फरमाया, और वो लोग जिनके घर नहीं थे उनके मसाइल हल किए, और इसी तरह जो जंगों में चीज़ें काम आती थी अल्लाह के नबी ने उन सब का इंतज़ाम किया। और बात यह है कि आम तौर पे जंगो जिदाल के साथ जुल्म और ज्यादती का तसव्वुर आता है, आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आपने उन असबाब और वजूहात और अखराज और मकासद को भी तब्दील कर डाला, यानी वो चीज़ें, वो रीजंस एंड वो डिफरेंट मीन्स थे आपसे पहले जिनके लिए दौरे जाहिलियत में जंग के शोले भड़का करते थे। यानी दौरे जाहिलियत में जंग नाम थी लूटमार और कत्लो गारतगरी का, जुल्म और ज्यादती और इंतकाम और तशद्दुद का, कमज़ोरों को कुचलने, आबादियां वीरान करने और इमारतें ढहाने का, औरतों की बेहरमती करने और बूढ़ों, बच्चों और बच्चियों के साथ संग दिली से पेश आने का, खेती बाड़ी और जानवरों को हलाक करने और ज़मीन में तबाही और फसाद मचाने का। मगर इस्लाम ने इस जंग की रुख तब्दील करके इसे एक मुकद्दस जिहाद में बदल दिया, जिसे नहायत मौजू और माकूल असबाब के तहत शुरू किया जाता है, और इसके ज़रिए ऐसे शरीफाना मकासद और बुलंद पाया अगराज हासिल किए जाते हैं जिन्हें हर जमाने और हर मुल्क में इंसानी माशरे के लिए बायस एजाज तस्लीम किया गया। यानी आपकी जंगे करने की वजूहात नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव थी, क्योंकि अब जंग का मफहूम यह हो गया था कि इंसान को कहर और जुल्म के निज़ाम से निकाल कर अदल व इंसाफ के निज़ाम में लाने की मुसलसल जिद्दोजहद की जाए। यानी एक ऐसे निज़ाम को जिसमें ताकतवर कमज़ोर को खा रहा हो, नोट कीजिएगा ये जुमले भी, एक ऐसा निज़ाम कायम किया जाए जिसमें ताकतवर कमज़ोर हो जाए जब तक कि इससे कमज़ोर का हक ना लिया जाए। इसी तरह अब जंग का मानी ये हो गया था कि इन कमज़ोर मर्दों, औरतों और बच्चों को निजात दिलाई जाए, जो दुआएं करते रहते हैं कि हमारे परवरदिगार हमें इस बस्ती से निकाल जिसके बाशिंदे जालिम हैं, और हमारे लिए अपने पास से वली बना और अपने पास से मददगार बना। सूरत निसा की आयत का तर्जुमा ही है ये किस्म से। नीज इस जंग का मानी ये हो गया कि अल्लाह की ज़मीन को गदर और ख़यानत यानी धोखेबाजी से, जुल्मों, सितम और बदी और गुनाह से पाक करके इसकी जगह अमन व अमान, राफत व रहमत, हकूक रसानी यानी हकूक देना और मुरव्वत और इंसानियत का नज़्म बहाल किया जाए। यानी आपकी जंगें लोगों से ज़मीन के टुकड़े लेने के लिए नहीं थी, बल्कि आपके दौर की जो जंगें थीं वो क्या थीं कि जिसमें लोगों को हक दिए जाते। एक होता है हक लेना, एक होता है हक देना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे? हक देने वाले थे। आप देखिए कि अगर ये तारीख हम गैर मुस्लिमों के सामने रखें, कभी हो नहीं सकता कि मीठे को कोई कड़वा कहे। ठीक है, दिल में तासुब होता है तो वो मीठा, कम मीठा तो लग सकता है लेकिन कड़वा नहीं हो सकता, और कोई अगर झूठ बोलेगा तो उसका झूठ भी सामने खुलकर आ जाएगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सारी चीज़ें, ख़ास तौर पे जिस पे दूसरे लोग कीचड़ उछालते हैं, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा में आज हमें कम अज़ कम इन सारी चीज़ों को लोगों के सामने लाना है। आप देखिए जो शर्मिंदगी होती है ना हमें किसी के बारे में भी, या इस्लाम के बारे में या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अगर कभी हो, तो ये हमारी कम इल्मी है। यानी आप ऐसे सोचिए कि अल्लाह के नबी को आप एक उस्ताद समझिए, और आपके उस्ताद ने कभी गलत बात बतानी ही नहीं है। कोई ऐसी चीज़ जिसके साथ इंसानियत का इस्तेहसाल हो, जुल्म व बर्बरियत हो, कोई कॉन्स्परेसीज हो, कुछ साज चीज़ें हो, धोखा हो, लेग पुलिंग हो, नेगेटिविटी हो, तो फिर आप उसको दुनिया के किसी प्लेटफॉर्म पे पेश कर दीजिए, आपको क्या फ़र्क पड़ता है? ख़तरा वहाँ होता है जहाँ दिलों में कुछ और ज़ुबानों पे कुछ और होता है। और आप देख लीजिए कि हक की आवाज़ को आप बिला रोक टोक, विदाउट एनी एडिटिंग कहीं भी पेश कर सकते हैं, क्योंकि कोई अंदर है ही नहीं छुपे हुए मोटिव्स। तो याद रखिए अल्लाह के नबी सल्लम की जंगें ऐसी क्लियर कट जंगें हैं जैसे आज हम अल्लाह के नबी के ये किस्से इल्मी माहौल में पढ़ रहे हैं। इसको भी कोई सुन ले तो कोई हर्ज नहीं, तो अगर अल्लाह के नबी के बारे में कोई जान ले तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। फिर इसी तरह से आप देखिए कि आपने जंग के लिए शरीफाना जवाबित यानी बड़े डिसेंट किस्म के रूल्स मुकर्रर किए, और अपने फौजियों और कमांडर्स को इनकी पाबंदी करने का हुक्म दिया कि किसी हाल में भी आपने रूल्स ब्रेक नहीं करने। हज़रत सुलेमान बिन बुरैदा रजी अल्लाह अन्हु का बयान है कि अल्लाह के नबी जब किसी शख्स को किसी लश्कर या सरिया का अमीर मुकर्रर फरमाते, मुराद ये कि आप जब किसी को लीडर बनाते, तो इसे ख़ास अपने नफ्स के बारे में अल्लाह से डरने की नसीहत करते, और इसी तरह दूसरे मुसलमानों के बारे में खैर की वसीयत फरमाते थे। यानी ये भी एक बहुत प्यारी बात है कि आप जिनको भी नॉमिनेट करते थे या कहीं असाइन करते थे तो पहले उनका तज़किया करते, उनकी तरबियत करते, और फिर फरमाते कि अब अल्लाह के नाम से अल्लाह की राह में गज़वा करो, और आप देखिए कि जिसने अल्लाह के साथ कुफर किया इनसे लड़ाई करो, और इसी तरह गज़वा करो, खयानत ना करो, बदहती ना करो, नाक कान वगैरह ना काटो, किसी बच्चे को कत्ल ना करो। ये थी वॉर टैक्टिस, एथिक्स ऑफ वॉर जो अल्लाह के नबी ने सिखाए। आज इन बातों को पेश कीजिए, विद रेफरेंसेस पेश कीजिए, हर मुल्क की ज़ुबान में इसको नकल कीजिए। ये वो बातें हैं जो बाहर पहुंचाने की ज़रूरत है। आप अजीबोगरीब खबरें इधर से उधर करते हैं, फ़ायदा क्या होगा? याद रखिए, दुश्मन चाहता ही ये है आपसे कि आपको गुस्सा आए और आपको एक लफ्ज़ ऐसा बोले कि जिसके बाद वो आपको पकड़ ले। आप कहें हमने तो नहीं बोलना, हम तो इल्मी बात कर सकते हैं, हम अपने प्यारे नबी का ये मिजाज और आपकी ये खूबियां पेश करते हैं। इसको अगर कोई झुटलाता है तो 100 दफ़ा झुटला दे, लेकिन फिर आप पे तो कोई बात नहीं आएगी ना। और हमेशा याद रखिए, जिस तरीके से और जिन रस्तों से नबी के दौर में मदद आई थी ना, आज भी ऐसी आएगी, क्योंकि कल भी वही शैतान था जो आज है, कल के फितने भी वही थे जो आज के हैं। तो सीरत पढ़िए आप, ख़ास तौर पे वो दौर पढ़िए सीरत का कि जिसमें आपके बारे में इस तरह की अजीबोगरीब बातें की जाती थी। इसी तरह आप आसानी बरतने का हुक्म देते और फरमाते आसानी करो, सख्ती ना करो, लोगों को सुकून दिलाओ, नफरत ना दिलाओ। जब रात में आप किसी कौम के पास पहुंचते तो सुबह होने से पहले हमला नहीं करते थे, यानी इनिशिएटिव नहीं लेते थे। क्यों? कि अनजाने में किसी को मार दिया, सोतों में मार डाला, ये तो बुज़दिलों की बात है। फिर इस तरह आप किसी को आग में जलाने से मना किया, इस तरह बांध कर कत्ल करने या औरतों को मारने और इन्हें कत्ल करने से भी मना किया, और लूट मार से रोका। हत्ता कि आपने फरमाया कि जो लूट का माल है वो मुर्दार की तरह ही हराम है, यानी इवन दुश्मन से भी आप लूट मार के कुछ नहीं ले सकते। ये बातें क्या दुश्मनों को दोस्त बनाने वाली नहीं है? इसी तरह आपने खेती बाड़ी तबाह करने, जानवर हलाक करने और दरख्त काटने से मना फरमाया, सिवाय इस सूरत के कि इसकी सख्त ज़रूरत आ पड़े और दरख्त काटे बगैर कोई चारा ना हो। फतेह मक्का के मौके पर आपने ये भी फरमाया कि किसी जख्मी पर हमला ना करो, किसी भागने वाले का पीछा ना करो और किसी कैदी को कत्ल ना करो। आपने ये सुन्नत भी जारी फरमाई कि सफीर को कत्ल ना किया जाए, और आपने जिन लोगों से मुआहदे हुए थे, जिनको आप गैर मुस्लिम शहरी कह सकते हैं, उनके कत्ल से भी नहायत सख्ती से रोका। यहाँ देखिए, ये है अकलियतों के हकूक, राइट्स ऑफ मिनोरिटीज, जो जिम्मी बन के रहते, जो आपको जिजिया दे देते, आपसे कोई अहद करते। आप देखिए, जब आप किसी मुल्क में जाते हैं, आप पहले ओथ लेते हैं कि हम आपके मुल्क के साथ सिंसियर रहते हैं, तो आपका उनका माहदा हो गया। तो वहाँ के हुक्मरानों को फिर उन लोगों की इज्जत करनी चाहिए, और उनके कत्ल से आपने रोका। यहाँ तक आपने क्या फरमाया कि कोई ऐसे गैर मुस्लिम को कत्ल करेगा जो माहदा कर चुका तो वो जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा, हालांकि इसकी खुशबू 40 साल के फासले से आती है। ये और इसी तरह के दूसरे बुलंद पाया कवायद और जवाबित है, यानी ये रूल्स एंड रेगुलेशंस थे जिनकी वजह से जंग का अमल जाहिलियत की गंदगियों से पाक साफ होकर मुकद्दस जिहाद में तब्दील हो गया। ये रुख दिखाइए अपनी जनरेशंस को, ये बहुत ज़रूरी है। आप और मैं अगर इसके ऊपर अपना शरह सदर कर लें तो फिर दूसरों का भी किया जा सकता है। तो यहाँ तक क्या सीखा? जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सीरत नहीं पढ़ी थी, पढ़ाई थी, ये सब नहीं पता था। हम मुंह से नहीं बोलते थे, उस दौर में इतनी जरूरत नहीं थी, लेकिन अंदर कहीं गिल्ट, इतनी जंगे क्यों? इस्लाम तो इतना पुरमन है, इस्लाम का मतलब तो पीस है, तो फिर ये सब कुछ हमें क्यों मिलता है? जी, लीडरशिप क्वालिटीज हमें अपने प्यारे नबी की दिख रही हैं। इसमें सोचिए कि आप देखिए कि जितना ज्यादा आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन चीज़ों के ऊपर गौर करेंगे ना, आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर कई चीज़ें अमली तौर पे समझ आने लगेंगी। क्या एक माँ को लीडरशिप की ज़रूरत नहीं है? मेरा ख्याल है माँ को जितनी है उतनी तो किसी को नहीं, क्योंकि उसके पास तो नस्लें हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लम की खूबियाँ, मैं तो ये बस बात कहती हूँ कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ऐ अल्लाह अपने नबी पर रहमतें भेज, दुरूद भेज, अपने दिल के एक एक खाने के अंदर से नबी सल्लम की मोहब्बत को महसूस किया करें। जब ये चीज़ें पढ़ते हैं ना, बिल्कुल ऐसे लगना चाहिए जैसे आप अपने ख़ानदान के किसी बुज़ुर्ग की बात करें। एक बहुत अजीमुल मर्तबा, एक बहुत खूबसूरत बाखलाक बाकिरदार बुज़ुर्ग हैं आप, और ये प्यार अगर आपके दिल में नबी का भर गया, मैं मान नहीं सकती कि आपको फिर हर वो चीज़ बुरी ना लगने लगे या वो चीज़ कोई अच्छी लगे जो नबी को बुरी लगती थी, वो पहनावा हो, वो बोल चाल, वो चाल ढाल, वो कुछ भी हो, आपका पूरा लाइफस्टाइल सुन्नतों में ढल जाता है ना, तो फिर आपकी आदत इबादत बनती है और आज के दौर में इसकी ज़रूरत है। और सबसे ज़रा गम अपनी नस्लों का है, बहुत दूर कर दिया हमने उनको अल्लाह के नबी से। हाँ नबी, वो जो बकरियाँ चराते थे, वो कहते हैं हमने कौन सी चरानी है, थे बड़े मुतबर। आज हम होली समझते हैं नबी सल्लम को, सक्सेसफुल नहीं समझते इल्ला माशाल्लाह। तो आइए देखते हैं फिर अल्लाह के नबी की ज़िंदगी का अगला रूप। कह लीजिए कि मुश्किलें गईं, वो जो अल्लाह ने सूरह दोहा में कहा ना कि आपका अगला दौर पिछले से अच्छा होगा ना, और इसी तरह फ़ इन्नमल उसरी युसरा, इन्नमल उसरी युसरा। अब आखिरी दौर जिसको कह लीजिए कि आपकी ज़िंदगी का एक और शुरू हो रहा है, क्या है कि लोग दीन में जौक दर जौक दाखिल होने लगे। इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह व रायतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहू काना तव्वाबा। पेज 596। अल्लाह के दीन में फौज दर फौज दाखिला। यहाँ छोटी सी बात करूँ, हक के लिए जब भी कोई खड़ा होता है ना, यानी दीन हक है सच है, शुरू में कोई शोहरत नहीं होती, चंद मुखलिसीन होते हैं जो उठा उठा के चीज़ें इधर से उधर फिरते हैं। होता तब भी उनके हक ही है, लेकिन लोगों को चूंकि नहीं पता, आपके लिए मार्केट नहीं हुआ, एडवर्टाइज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। अगर वो चंद लोग ही जमे रहें और लोग उनको चंद साल इस तुंदही से और इस जोश के साथ दीन के लिए काम करता देख लें कि सेल्फलेस एफर्ट्स, तो एक वक्त आता है कि ये कैफियत आती है जो हम पढ़ने लगे हैं। गज़वे फतेह मक्का एक फैसला कुन मार्का था, कब हुआ, 8 हिजरी में, जिसने बुत परस्ती का काम तमाम कर दिया और सारे अरब के लिए हक और बातिल की पहचान साबित हुआ। इसी की वजह से सबके शुबहात यानी डाउट्स जाते रहे, इसीलिए इसके बाद उन्होंने बड़ी तेज़ रफ्तारी से इस्लाम कबूल किया। लिखिए, असल फतह ये थी कि लोगों ने आपको इतना कामयाब देखा और अब तो आप कह लीजिए कि एक बेताज बादशाह का अगर लफ्ज़ कोई बोल दे तो कोई मजायका नहीं है। लोगों ने जब देखा कि ये अच्छे लीडर के साथ, देखिए ये तो कामयाब हो गए, तो कामयाब होने वालों का साथ देने वाले बड़े होते हैं, याद रखिए। थक्के खाने वाले, बुनियादें खोदने वाले थोड़े होते हैं, शिकस्त खुर्दा लोगों के साथ थोड़े होते हैं। ये भी एक अजीब इंसानों की ज़हनियत है, हम इस पर अभी क्या बात करें। याद रखिए कि हक की पहचान कसरत नहीं है। सब एक रोड पे जा रहे हैं और वो गलत है, तो आप दूसरे पे जाइए इस यकीन के साथ कि अक्सर हमुल जाहिलून। अक्सरियत की बात ना करें, मेजोरिटी इज़ नॉट अथॉरिटी। लेकिन जब मक्का पता हुआ, लोगों को पता चला कि इनमें भी कोई दम है, तो अब लोग जो थे वो आने लगे। और याद रखिए, बाद में आने वाले 100 शुरू में आने वाले 1 से भी हल्के होते हैं, क्योंकि जो कामयाबियों को देख कर आएगा उसमें कहीं ना कहीं तो ज़रूर कोई दुनियादारी भरी होगी ना। खैर, अमर बिन सलमा का बयान है, कहते हैं कि हम एक चश्मे पर आबाद थे जहाँ से लोग गुजरा करते थे, हमारे पास से काफ़िले गुजरते रहते थे और हम इनसे पूछते थे कि लोगों का क्या हाल है। उस आदमी, इशारा नबी सल्लम की तरफ होता, उसका क्या हाल है और कैसा है। लोग कहते वो समझता है कि अल्लाह ने इसे पैगंबर बनाया है और इसके पास वही भेजी है और अल्लाह ने ये और ये वही किया है। वो जो प्रोपेगंडे और बस कह लें कि स्ट्रीट टॉक्स होती है ना, उसका जिक्र है। जब भी कोई काम होगा लोग ज़रूर उसको डिस्कस करेंगे, तो लोग अल्लाह के नबी के बारे में रास्तों में बातें करते, ये करते, तो ये कहते हैं कि मैं लोगों की ये बातें याद करता और गोया कि ये मेरे सीने में चिपक जाती, यानी मुझे याद रहती। और फिर क्या हुआ, अरब हल्का बगोशे इस्लाम होने के लिए फतेह मक्का का इंतज़ार कर रहे थे। कहते क्या थे कि इसे और इसकी कौम को ज़रा छोड़ दो, अपनी कोशिशें कर लें, अगर ये अपनी कौम पर गालिब आ गए तो इसके अंदर सच्चे नबी हैं। और जब कभी फतेह मक्का का वाक़या पेश आया तो हर कौम ने अपने इस्लाम के साथ मदीना की तरफ पेशरफ्त की। किस लिए भला, पहले तो मदीना पे आते थे ढाने के लिए, खंदकें खुदवाई, मारने मरवाने के लिए आते थे, अब सुलह के लिए, अब खैर सगाली, फॉर गुड टर्म्स आते थे। कहते हैं कि मेरे वालिद भी मेरी कौम के इस्लाम के साथ तशरीफ़ ले गए, अल्लाह के नबी से मिलकर वापस आए तो फरमाया, ये जुमला लिख लें, मैं तुम्हारे पास खुदा की कसम एक नबी बरहक के पास से आ रहा हूँ। आपने फरमाया कि फ़लाँ नमाज फ़लाँ वक्त पढ़ो और फ़लाँ नमाज फ़लाँ वक्त पढ़ो, और जब नमाज का वक्त आ जाए तो तुम में से एक आदमी अजान कहे और जिसे कुरान ज़्यादा याद हो वो इमामत करे। यहाँ से अंदाज़ा होता है कि फ़तह मक्का का वाक़या हालात को तब्दील करने में और इस्लाम को कुव्वत बख्शने में, और इसी तरह अहले अरब का पॉइंट ऑफ व्यू यानी मौक़िफ़ मुतय्यन कराने में और इस्लाम के सामने इनको सरेंडर करने में कितने गहरे और दूर असरात रखता था। यानी मक्का क्या फतह हुआ, चारों तरफ इस्लाम इस्लाम होने लगा, और ये कैफियत गज़वे तबूक के बाद पुख्ता से पुख्ता तर हो गई। यहाँ भी नोट कीजिएगा, कितनी बड़ी आजमाइश थी तबूक के लिए निकलना। बाकी सब आसान था, निकलना मुश्किल था। लेकिन उसके असरात देखिए, दिलों में इस्लाम की धाक बैठी, गुड रेपिटिशन हो गई, लोग आपको जानने लगे, लोगों को पता चल गया कि ये तो बड़ी बड़ी कुव्वतों से भी नहीं डरते। और इसी तरह आप देखिए तो 9 और 10 हिजरी में मदीना आने वाले वफूद का तांता बंधा हुआ था। यानी लोग ट्रूप्स की शक्ल में और बड़े बड़े ग्रोहों में आते और लोग अल्लाह के दीन में फौज दर फौज दाखिल हो रहे थे। क्या खूबसूरत समा होगा। देखिए खुशी तो होती है ना ज़्यादा को आता देखकर, ये तो ईमान का भी तकाज़ा है ना। गुनाह को देखते दिल घुटे और नेकियां करते देखकर खुशी हो। अल्लाह के नबी के नाते से ज़रा इसको फील तो कीजिए। कहाँ एक अबू बकर, खदीजा, फिर अली, फिर जैद, 5-6 मोती थे जो कुछ अरसा आपके साथ ही रहे। फिर अशरब मुबशरा आ गए, फिर एक से एक, और फिर जब उमर फारूक इस्लाम लाते हैं तो फिर इस्लाम खुला। और आज क्या हो रहा है सुनिएगा। इस्लामी लश्कर जो फतेह मक्का के मौके पर 10,000 सिपाहियों पर मुश्तमिल था, इसकी तादाद गज़वे तबूक में जबकि अभी फतेह मक्का पर पूरा 1 साल भी नहीं गुजरा था, इतनी बढ़ गई कि वो 30,000 फौजियों के ठाठे मारते हुए समंदर में तब्दील हो गया। फिर हम हजरतुल विदा में देखते हैं कि 1,24,000 या 1,44,000 यानी 44,000 अहले इस्लाम का सैलाब उमड़ पड़ा। यानी लोग क्या थे, ऐसे लगता था सैलाब आया हुआ। आज भी कभी आप ऊपर खड़े होकर हरम को देखें तो उसके इर्द गिर्द तवाफ करते हुए लोग एक पानी का रैला ही लगते हैं। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिरदा गिर्द इस तरह लबैक पुकारता, तकबीर यानी अल्लाह अकबर कहता और हमदो तस्बीह के नगमे गुनगुनाता है कि आफाक गूंज उठते हैं और वादियों को अफसार नगमे तौहीद से मामूर हो जाते हैं, कितनी खुशी होती होगी, कितनी आंखों को ठंडक मिलती थी। ये वो लोग महसूस कर सकते हैं जो 2-4 के 7 मेहनतें कर करके अब लोगों को भुगतने से ही कासिर हैं। इतनी क्वेरीज, इतने सवाल, इतने जवाब, इंसानी तबीयत तो घबराती है लेकिन अंदर से एक सुकून तो आता है ना। तो याद रखिए जब भी कोई फैक्ट्री रात दिन काम करेगी ना तो कुछ लोगों को परेशानी तो होगी, लेकिन अगर सुबह के और शाम के और लोग हों तो जिसका वो काम है वो उसको देकर खुश तो होगा ना। अपने इस छोटे से वजूद को ऐसे यूज़ कीजिए कि ये वापस करना है आप, तो चलो इसमें से जो निचोड़ता है उसको निचोड़ लो और डाई एम्प्टी, जाने से पहले सब कुछ दे के जाना है इंशाअल्लाह ताला। फिर इसी ग्रोहों में वफूद आते थे, ये नहीं वफद, एक नहीं आता था बल्कि पूरे ग्रुप्स आते थे। आज भी आप देखिए कभी एक बंदा आता था, अब तो पूरे पूरे ग्रुप्स आएंगे, आप हमें ले लीजिए, हमसे कुछ कर लें, हमारे करा दें। और आप ये चीज़ें अपनी ज़िंदगी में ज़रूर देखेंगे अगर आप सही रुख पे चल रहे हैं तो। अहले मगाजी कौन है, मगाजी किसको कहते हैं, वो हिस्टोरियंस जिन्होंने आपके गज़वात के बारे में लिखा, ठीक है, वो कहते हैं कि 70 से ज़्यादा डिफरेंट ग्रुप्स नबी सल्लम के पास आते, लेकिन यहाँ ना तो इनके ज़िक्र की गुंजाइश है और ना इनके ज़िक्र में कोई फ़ायदा छुपा हुआ है। इसलिए सिर्फ वही गिरोह जिनका ज़िक्र तारीखी हैसियत से अहम हो और नुदरत के हामिल है यानी बहुत यूनिक थे, कोई ना कोई उस ग्रुप के साथ नई बात थी तो उसका जिक्र कर लेते हैं। और यहाँ ये बात भी याद रखिए कि अगर आम कबाइल के जो ग्रुप्स थे वो फतेह मक्का के बाद नबी सल्लम की खिदमत में हाजिर होना शुरू हुए थे, लेकिन बास बास कबाइल ऐसे भी थे जिनके वफूद फतेह मक्का से पहले ही मदीना आ चुके थे, हम इनका भी जिक्र करते हैं। गोया कि आप कह लीजिए कि हर एक के मुंह पे एक ही नाम था, शोहरत होने लगी, पब्लिसिटी हो गई, क्योंकि अच्छी चीज़ सबसे बड़ी खुद मार्केट करती है अपने आप को, जिसको आप कहते हैं वर्ड बाय माउथ, दैट इज़ योर बेस्ट एडवर्टिजमेंट। जो एक दफ़ा आपसे कुछ ले गया वो दोबारा भी आए, कहते हैं कि एक दुकान पर कितने कस्टमर्स आते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बताइए कि कितने रिपीटेड कस्टमर्स आते हैं। जो दोबारा आ गए ना आपके पास, समझिए कि वो आपकी क्वालिटी को कबूल कर गया। तो पहला वफद था वफद अब्दुल कैस, इस कबीले का वफद 2 बार खिदमत नबी में हाजिर हुआ था। पहली बार 5 हिजरी में या इससे पहले भी, और दूसरी बार तामुल वफूद जो 9 हिजरी था उसमें आया। पहली बार इसकी आमद की वजह यह थी कि इस कबीले के एक शख्स जिसका नाम था मुनकिस बिन हब्बान सामान्य तिजारत लेकर मदीना आया जाया करता था। वो जब नबी सल्लम की हिजरत के बाद पहली बार मदीना आया और इसे इस्लाम का इल्म हुआ तो वो मुसलमान हो गया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ख़त लेकर अपनी कौम के पास गया। इन लोगों ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। ये भी नोट करिएगा, एक आता था और बाकियों के लिए इस्लाम साथ ले जाता था। इनके 13 या 14 आदमियों का एक वफद हुरमत वाले महीने में खिदमत नबवी में हाजिर हुआ। इसी दफ़ा इस वफद ने नबी सल्लम से ईमान और मशरूबात के बारे में सवाल किया था। इस वफद का सरबराह अल अशजो अल असरी था, जिसके बारे अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि नफी कलखसलतैन, तुम्हारे अंदर दो खसलतें या दो आदात ऐसी हैं युहिब्बुहुमुर्रहमान, जिनको अल्लाह पसंद फरमाता है, अलहिल्मु वल इना, दूरंदेशी और बुर्दबारी। ए अल्लाह हमारे अंदर ये दोनों डाल दे। दूसरी बार इस कबीले का वफद जैसा कि बताया गया कि वफूद वाले साल में आया था। इस वक्त इनकी तादाद 40 थी और इनमें आला बिन जारूद आबदी था जो क्रिश्चियन था लेकिन मुसलमान हो गया और इसका इस्लाम खूब रहा। तो सारा लश्कर तो भाग भाग के अल्लाह के नबी के पास आ रहा है, लेकिन अशजो जो हैं सवारी से उतरे, खुद को साफ सुथरा किया, सफ़र की गंदगी पसीना ख़त्म किया और साफ सुथरे कपड़े पहन कर नबी के पास आए। तो इस पे आपने ये खुशखबरी दी। इससे पता चलता है कि दीन का काम करने वालों का ज़ाहरी हाल हुलिया भी साफ़ सुथरा होना चाहिए। उनकी पर्सनैलिटी, उनका चलना, उनका बात करना इतना महजब हो कि दूसरे लोग इससे भी मुतासर हों। फिर इसी तरह दूसरा वफद था वफद दौस। किसका होगा ये कबीला, याद करें? सन 9 हिजरी के अवाइल यानी मिडल में मदीना आया ये वफद। इस वक्त नबी सल्लम खैबर में थे और इस कबीले के सरबराह हज़रत तुफैल बिन अमर दौसी थे रदी अल्लाह अन्हो, जो इसी वक्त मुसलमान हुए थे जब अल्लाह के नबी मक्का में थे। फिर उन्होंने जाकर अपनी कौम में तबलीग की दावत का काम किया, लेकिन कौम बराबर टालती रही और बस पोस्टपोन करती रही, यहाँ तक कि हज़रत तुफैल जब इनसे मायूस हो गए फिर उन्होंने अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ की कि आप कबीला दौस पर बददुआ कर दीजिए। लेकिन आपने फरमाया कि अल्लाह दौस को हिदायत दे, और आपकी इस दुआ के बाद इस कबीले के लोग मुसलमान हो गए। हज़रत तुफैल ने अपनी कौम के 70 या 80 यानी 70 और 80 घरानों की जमीयत लेकर सन 7 हिजरी के दरमियान में इस वक्त मदीना हिजरत की, जब आप खैबर में तशरीफ़ फरमा थे, और इसके बाद हज़रत तुफैल रज़ी अल्लाह अन्हो खैबर में आपके साथ जा मिले। जी कबीला दोस्त किसका था, याद आया? सोच लीजिए अभी भी, आगे जाके फिर समझ आ जाएगा। और भी तीसरा कबीला था फरवा बिन अमर जुजामी का, पैगाम रसा। हज़रत फरवा रूमी सिपाहियों के अंदर एक अरबी कमांडर थे। इन्हें रोमियों ने अपनी हदूद से मिले हुए अरब इलाकों का गवर्नर बना दिया और इनका मरकज़ मान, जिसको आज आप जॉर्डन कह सकते हैं, साउथ साइड उसकी, वहाँ था। और इसके अमलदारी गिरदोपेश के इलाके में थी, यानी ये जॉर्डन के इर्द गिर्द के इलाकों में था। उन्होंने जंगे मूता जो सन 8 हिजरी में हुई, वहाँ मुसलमानों की मारकाराई बहादुरी और जंगी पुख्तगी को देखकर इस्लाम कबूल किया और एक एम्बेसडर यानी कासिद भेजकर अल्लाह के नबी को अपने मुसलमान होने की इत्तला दी। तोहफे में एक सफ़ेद खच्चर भी भेजा था। और रूमियों को इनके मुसलमान होने का इल्म हुआ तो उन्होंने पहले तो इन्हें गिरफ्तार करके कैद किया, फिर इख्तियार दिया कि या तो मुर्तद हो जाएं या मौत के लिए तैयार रहें। और उन्होंने इस्लाम छोड़ने की बजाय मौत को तरजीह दी और इनको फिर फलस्तीन में अफरा नाम के एक चश्मे पर सूली देकर शहीद कर दिया गया। यानी छोटी छोटी कुर्बानियाँ अभी भी लोगों को देनी ही पड़ी। फिर चौथा वफद था वफद सदा। ये सन 8 हिजरी में जेराना से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वापसी के बाद हाजरे खिदमत हुआ। इसकी वजह क्या हुई कि अल्लाह के नबी ने 400 मुसलमानों की एक मुहिम यानी एक ग्रुप तैयार करके उसे हुक्म दिया कि यमन का वो गोशा रौंद आए जिसमें कबीला सदा रहता है। ये मुहिम अभी वादी कनात के सिरे पर ही खैमाजन थी कि हज़रत ज़याद बिन हारिस सदाई को इसका इल्म हो गया, तो वो भाग कर अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि मेरे पीछे जो लोग हैं, मैं इनके नुमाइंदे की हैसियत से हाजिर हुआ हूँ, आप अपना लश्कर वापस बुला लें, मैं आपके लिए अपनी कौम का ज़ामिन हूँ। यानी गोया के सरेंडर कर दिया, गिव अप किया। क्या वैसे वो दौर था। लोग पहले से ही डरे होते थे, और अगर अल्लाह के नबी किसी को उधर भेज देते तो लोग फौरन गिव अप कर देते। आपने बाद ये कनात ही से लश्कर वापस बुला लिया, ये भी नोट कीजिए। आपका अगर मकसद लड़ना भिड़ना या कोई माले गनीमत होता तो आप उसकी बात को क्यों इतनी अहमियत देते? यदि जब लोग सरेंडर कर देते तो आप बस उनको अपने सीने से लगा लेते। इसके बाद हजरत ज़य्यात ने अपनी कौम में वापस जाकर उनको तरगीब दी कि अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर हों। इनकी तरगीब यानी रग़बत दिलाने पर, मोटिवेशन पर 15 लोग अल्लाह के नबी के पास आए, इस्लाम कबूल किया, बैत की, फिर अपनी कौम में वापस जाकर इस्लाम की तबलीग की, और इनमें इस तरह इस्लाम फैल गया। और हजरत अलविदा के मौके पर इनके 100 आदमियों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में शर्फ़े बारियाबी हासिल किया, यानी आपसे मुलाकात की। गोया कि हजरत अलविदा के लश्कर में 100 के करीब लोग सिर्फ इस एक कबीले के थे। इसी तरह काब बिन जुहैर बिन अबी सलमा की आमद थी। ये शख्स एक शायर खानवादे का चश्मो चिराग था। मुराजे के इसकी फैमिली में शायरी आम थी। खुद भी अरब का अजीम तरीन शायर था, और ये काफिर था और नबी सल्लम की हज्व किया करता था। इमाम हाकिम के बकौल ये भी मुजरिमों की फहरिस्त में था, जिनके बारे में फतह मक्का के मौके पर कहा गया कि अगर वो खाना काबा का पर्दा पकड़े हुए भी पाए जाएं तो भी इनकी गर्दन मार दी जाए, यानी इश्तिहारी मुजरिम थे। लेकिन ये शख्स बच निकला। इधर अल्लाह के नबी ने जब गजवाए ताइफ जो 8 हिजरी में हुआ वहाँ से वापस आए तो काब के पास इसके भाई बुजैर बिन जुहैर ने लिखा कि रसूलुल्लाह ने मक्का के कई नफरात को कत्ल करा दिया जो आपकी हज्व करते थे, यानी मजाक उड़ाते थे, तौहीन रिसालत थी, और आपको ईजाएं पहुँचाते थे। कुरैश के बचे खुचे शोरा में से जिधर सींग समाए उधर निकल भागा, यानी जान बचा कर भाग गए। लिहाजा अगर तुम्हें अपनी जान की ज़रूरत है तो अल्लाह के नबी के पास उड़कर आ जाओ, क्योंकि कोई भी शख्स, ये जुमला नोट कीजिएगा, कोई भी शख्स तौबा करके आपके पास आ जाए तो आप इसे कत्ल नहीं करते, और अगर ये बात मंजूर नहीं तो फिर जहाँ निजात मिल सके निकल भागो। इसके बाद दोनों भाइयों में मज़ीद ख़त्तो किताबत हुई, जिसके नतीजे में काब बिन जुहैर को ज़मीन तक महसूस होने लगी और इसे अपनी जान के लाले पड़ते नजर आए, यानी उसको लगा कि सरेंडर नहीं करूँगा तो मारा जाऊँगा। इसलिए आखिरकार फिर वो मदीना आया और जो है ना कि एक आदमी के घर में मेहमान बन के ठहरा, और फिर उसी के साथ सुबह की नमाज पढ़ी। नमाज से फारिग हुए तो जो जोहैनी थे उन्होंने इशारा किया कि उठकर अल्लाह के नबी के पास जाकर बैठिए, और ये गए और अपना हाथ फिर आपके हाथ में दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको नहीं पहचानते थे क्योंकि एक नया चेहरा था। इससे भी क्या पता चलता है कि आपको गैब नहीं मालूम था। आप ऐसे नहीं कि आपको बस रात जाते ही सारी चीज़ों की खबर हो जाती थी। तो जब एक नए बंदे को आप भी फर्स्ट टाइम देखेंगे तो आप क्या सोचेंगे उसके बारे में कि न जाने ये कौन है? और फिर ऐसे ही बात इसमें हमें समझ आ गई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इनको नहीं पहचाना तो ज़रा पूछा कि बताइए आप कौन है, कैसे आए, क्या हुआ? तो इन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल काब बिन जुहैर तौबा करके मुसलमान हो गया है और आपसे अमन का खास घर बनकर आया है, तो क्या अगर मैं इसे आपकी खिदमत में हाजिर कर दूं तो आप इसके इस्लाम को कबूल फरमा लेंगे? आपने फरमाया हाँ। उसने कहा मैं ही काब बिन जुहैर हूँ। देखिए हिकमत की बात नोट कीजिए, यानी जब देखा ना कि अल्लाह के नबी ने तो मुझे नहीं पहचाना तो फौरन ही फिर आपके सामने आ गए और अपने आप को पेश किया। देखिए ये अकलमंदी होती है, ये कोई होशियारी या चालाकी नहीं होती, इसको बेनिफिट ऑफ डाउट भी कहते हैं, और ये अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई एक नेमत होती है। बहुत कम लोग हैं जिनको ये बातें पता होती हैं, और बाज़ लोग कहते हैं नहीं जी हम तो ऐसी कोई दो बातें नहीं करते। ये दो बातें नहीं होती, ये हिकमत का तकाजा है कि कभी कभी दूसरे को जो भी कह लीजिए कि आपका मुखालिफ है या आपके पीछे है, आप उसको बेहतरीन तरीके से अपनी ये बातें बताइए कि आप अपनी हिकमत और अक्लमंदी के साथ इंशाल्लाह ताला फ़ायदा ही लेंगे। खैर जब इन्होंने कहा मैं काब बिन जुहैर हूँ तो ये सुनकर एक अंसारी साहब इन पर झपट पड़े और इनकी गर्दन मारने की इजाज़त चाही। आपने फरमाया छोड़ दो, ये शख्स तायब होकर यानी तौबा कर कर और पिछली बातों से हाथ खींच कर आया, यानी ये भी तो तौहीन रिसालत के मर्तकीब थे। इसको नोट किया करें, आपके सामने बैठा है वो शख्स जिसने आपकी हज्व की, आपका मजाक उड़ाया, और आप कह रहे हैं छोड़ दो इसने तौबा कर ली, तो आप लोगों को क्यों नहीं माइल करते तौबा करने पे? आप क्यों उनको मजीद स्टबन करते हैं उनके गलत कामों पे? अच्छा अखलाक, अच्छे मामलात बड़े से बड़े पत्थरों को पिघला देते हैं। आप बताइए, नहीं हम मुस्लिम ऐसे नहीं हैं जो आप सोचते हैं। आप जो मर्जी करें, हम तो रिएक्शन में नहीं आ रहे। और अपने दीन पे कायम रहकर अगर मुसलमान अपना अखलाक दिखा देना, तो बड़े से बड़ा फिरौन क्यों ना हो, वो भी ज़रूर सोचेगा कि आखिर मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ। इसके बाद फिर इसी मौके पर काब बिन जोहैर ने अपना मशहूर कसीदा आपको पढ़कर सुनाया, जिसकी इब्तदा यूँ है। कहते हैं कि बी अंत सुआदु फ़क़ल बिल यौम मतवूल, मुतीमु असरी हा लम यदित मकबूल। क्या मतलब? सुआद दूर हो गई तो मेरा दिल बेकरार है, इसके पीछे वा रफ्ता यानी बेचैन, और बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, इसका फ़दिया नहीं दिया गया। इस कसीदे में काब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माजरत करते हुए, आपकी मदह करते हुए आगे यूं कहा, मैं आपको उर्दू तर्जमा सुना देती हूँ ताकि आप इंजॉय करें। कहते हैं कि मुझे बताया गया कि अल्लाह के रसूल ने मुझे धमकी दी है, हालांकि अल्लाह के रसूल से दरगुजर की तवक्को है। आप ठहरें, चुगलखोरों की बात ना लें, वो ज़ात आपकी रहनुमाई करे जिसने आपको नसाइख और तफसील से पूर्ण कुरान का तोहफा दिया है। अगरचे मेरे बातें में बातें बहुत कही गई हैं, लेकिन मैंने जुर्म नहीं किया। मैं ऐसी जगह खड़ा हूँ, अगर हाथी भी वहाँ खड़ा हो और इन बातों को सुने और देखे तो थर्राता रह जाए, सिवाय सूरत के कि इस पर अल्लाह की इजाज़त से रसूल की नवाजिश हो। हत्ता कि मैंने अपना हाथ किसी नज़ा के बगैर इस हस्ती मोहतरम के हाथ में रख दिया, जिसे इंतकाम पर पूरी कुदरत है और जिसकी बात बात है। जब मैं इससे बात करता हूँ, हालांकि मुझसे कहा गया कि तुम्हारी तरफ फुलां फुलां बातें मंसूब हैं और तुमसे पूछा जाएगा यानी सवाल जवाब होंगे, तो वो अब मेरे नज़दीक इस शेर से भी ज़्यादा खौफनाक होते हैं जिसका कछार किसी हलाकत खेज वादी के बतन में वाक़ किसी ऐसी सख्त ज़मीन में हो जिससे पहले भी हलाकत ही हो। यकीनन रसूल एक नूर हैं जिनसे रोशनी हासिल की जाती है, अल्लाह की तलवारों में से एक सौंती हुई हिंदी तलवार है। क्या आप देखिए, लफ्ज़ खूबसूरत है ना, असल में हम उस तरह का अदब नहीं रखते। मुराद ये कि इन्होंने अपने नशार में नबी सल्लम के हिल्म की और आपके माफ़ करने की और आपके बारे में जो भी इनके दिल में अच्छे जज्बात थे उसकी अक्कासी की है। इसके बाद काब बिन जुहैर ने मुहाजरीन कुरैश की तारीफ़ की, क्योंकि काब की आमद पर इनके किसी आदमी ने खैर के सिवा कोई बात और हरकत नहीं की थी, लेकिन इनकी मदह के दौरान अंसार पर तंज की, क्योंकि इनके एक आदमी ने इनकी गर्दन मारने की इजाज़त चाही थी। वही ऊपर जो पढ़ा कि अल्लाह के नबी ने जब इनको पहचान लिया तो सहाबा को ज़ाहिर अल्लाह के नबी से मोहब्बत बहुत थी, तो इसी मोहब्बत की वजह से फिर लोगों ने सोचा कि चलिए हम इनको मार देते हैं। तो उस पर तारीफ़ करते हुए कहते हैं, वो कुरैश खूबसूरत मटकते ऊँट की चाल चलते हैं और शमशीर जनी यानी तलवार चलाना इनकी हिफाजत करती है, जबकि नाटे खोटे काले कलोटे लोग रास्ता छोड़कर भागते हैं। लेकिन जब वो मुसलमान हो गए और इनके इस्लाम में उमदगी आ गई, तो उन्होंने एक कसीदा अंसार की तारीफ़ में किया और इनकी शान में इससे जो गलती होगी इसकी तलाफी की। यहाँ भी नोट करने का नुक्ता है, कभी कभी साथ चलते हुए कुछ लोगों के बारे में बदगुमानियाँ आ जाती हैं, जहाँ आपको एहसास हो कि ऐसा नहीं था, फ़ौरन जाकर शिकन कीजिए। आई एम सॉरी कहना दुनिया का मुश्किल तरीन जुमला है, लेकिन उसके लिए बहुत आसान है जो अपने नफ्स को काबू पाए और अपने आप को अल्लाह के आगे बेच दे। तो उस कसीदे में क्या कहा उसने, कहता है कि जिसे करीमाना जिंदगी पसंद हो वो हमेशा साले हंसार के किसी दस्ते में रहे। उन्होंने खूबियाँ बाप दादा से विरसे में पाई हैं, दर हकीकत अच्छे लोग वही हैं जो अच्छों की औलाद हों। तो गोया कि इन्होंने अल्लाह के नबी के साथ फिर अंसार का जो ताल्लुक था उसकी तारीफ़ की। इसी तरह छठा एक वफद है जिसको वफद अजरा कहते हैं। ये वफद सफ़र 9 हिजरी में मदीना आया, 12 आदमियों पर मुश्तमिल था, इसमें हमज़ा बिन नौमान भी थे। जब इस वफद से पूछा गया कि आप कौन लोग हैं, तो इनके नुमाइंदों ने कहा कि हम बनू अजरा हैं, कुसई के अख़ियाफ़ी भाई, सौतेले भाई, हमने ही कुसई की मदद की थी यानी उनकी तायीद की, वेरीफाई किया, और खुजाया और बनू बकर को मक्का से निकाला था, यहाँ हमारे रिश्ते और कराबतदारियाँ हैं। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुश आमदेद कहा और मुल्क शाम के फतह किए जाने की बिशारत दी, नीज इन्हें काहिना औरतों से सवाल करने से मना किया यानी मुस्तकबिल का हाल पूछना, फॉर्चून टेलर्स, और इन जबीहों से रोका जिन्हें ये लोग हालत शिर्क में ज़िबह किया करते थे। इस वफद ने इस्लाम कबूल किया और चंद रोज ठहर कर वापस आ गया। इससे क्या पता चलता है कि लोग बड़ी बड़ी अखलाकी खराबियों का भी शिकार होते हैं, लेकिन जब आप उनको दीन इस्लाम दिखा देते हैं, उनका तज़किया हो जाता है, फिर उनकी तरबियत हो जाती है, तो फिर वो अपने हाल को बदलते हैं। देखिए, लोगों को उनकी बुराइयों के साथ कबूल कीजिए, लोगों को उनकी खामियों, कमियों, बेशियों के साथ कबूल कीजिए। बहुत से लोग मिल जाएंगे आपको, आहिस्ता आहिस्ता कमियां दूर हो जाएंगी, खामियां दूर हो जाएंगी। अगर आप ये कहें ना कि परफेक्ट लोग मेरे साथ रहें, तो आप अकेले ही रहिए। आप तो खुद भी नहीं है परफेक्ट, किसी और को कहाँ करेंगे। और एक ही ज़ात है जो अल्लाह की ज़ात है, तो हमेशा अपने लिए खुशकिस्मती समझा करें इस बात को। चलें, गलतियां करते हैं ना, साथ तो हैं, अकेला बंदा क्या जीता है। और ऐसे लोग आप देखिए कि एक दिन आता है कि फिर आपके लिए बहुत सारी कामयाबियों का जरिया बनते हैं। वफ़त बली, ये रबी अव्वल सन 9 हिजरी में मदीना आया और मुसलमान होकर 3 रोज़ वहाँ रहे। क्याम के दौरान वफ़द के जो सड़े थे, यानी उनके सरदार या रईस अबुल दबीब, उन्होंने पूछा कि क्या मेहमान नवाजी में भी अजर है, यानी किसी को खिलाना पिलाना। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हाँ, किसी मालदार या फकीर के साथ जो भी अच्छा सलूक करोगे वो सदका है। इसने पूछा, अच्छा कितने दिन तक हम मेहमान रह सकते हैं, यानी मुद्दत दियाफ़त, मुराद ये कि मेहमान के हक कितने दिन तक पूरे होते हैं। तो आपने फरमाया कि 3 दिन। इसने पूछा, अच्छा मुराद ये कि उसके बाद उसको आम खाने में शामिल करो। अब ये नहीं कि कोई पाकिस्तान से आया था, अब उन्हें क्या, अब आप जाइए। मुराद ये कि 3 दिन खूब इज्जत कीजिए, ज़्यादा खिलाइए पिलाइए, अच्छी टेक केयर करें, उसके बाद जो फिर आम आपकी ज़िंदगी है उसमें शामिल करें। फिर उसने अगला सवाल किया कि किसी लापता शख्स की गुमशुदा भेड़ बकरी मिल जाए तो क्या हुक्म है। आपने फरमाया, वो तुम्हारे लिए है या तुम्हारे भाई के लिए या फिर भेड़िए के लिए। मुराद ये कि अगर तुम नहीं लोगे और उसका मालिक मिल नहीं रहा तो भेड़िया खा जाएगा। इसके बाद उसने गुमशुदा ऊँट के मुतालिक सवाल किया। आपने फरमाया, तुम्हें इससे क्या वास्ता, इसे छोड़ दो यहाँ तक इसका मालिक इसे पा जाए। मुराद ये था कि ऐसे ही इतने सवाल करने की ज़रूरत नहीं, और जिसकी चीज़ है आखिर वो भी तो ढूंढ रहा होगा ना, और जब वो लोग उसको पा लेंगे तो ले जाएंगे। वफदे सकीफ, ये वफ़द रमज़ान 9 हिजरी में तबूक से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वापसी के बाद हाजिर हुआ। इस कबीले में इस्लाम फैलने की सूरत यह हुई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ीक़ादा सन 8 हिजरी में जब ग़ज़वाए ताइफ से वापस हुए, तो आपके मदीना पहुँचने से पहले ही इस कबीले के सरदार उरवा बिन मसूद ने आपकी खिदमत में हाजिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया। फिर अपने कबीले में वापस जाकर लोगों को इस्लाम की दावत दी। वो चूँकि अपनी कौम का सरदार था, और सिर्फ यही नहीं कि इसकी बात मानी जाती थी, बल्कि इसे इसके कबीले के लोग अपनी लड़कियों और औरतों से भी ज़्यादा महबूब रखते थे, इसलिए इसका ख्याल था कि लोग इसकी इताअत करेंगे। लेकिन जब इसने इस्लाम की दावत दी, तो इस तवक्को के बरखिलाफ़ लोगों ने इस पर हर तरफ से तीरों की बौछार कर दी और इसे जान से मार डाला। फिर इसे कत्ल करने के बाद चंद महीने तो यूं ही मुकीम रहे, लेकिन इसके बाद इन्हें एहसास हुआ कि गिर्दोपेश का इलाका जो मुसलमान हो चुका है, इससे हम मुकाबले की ताब नहीं रखते। लिहाजा उन्होंने बाहम मशवरा करके तय किया कि एक आदमी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजें, और इसके बाद अब्दी या लैल बिन आमर से बातचीत होगी। मगर वो तैयार ना हुआ। इसे डर क्या था कि कहीं इसके साथ भी वही सलूक ना किया जाए जो उरवा बिन मसूद के साथ किया जा चुका है। इसलिए उसने कहा कि मैं ये काम इस वक्त तक नहीं कर सकता जब तक मेरे साथ मजीद कुछ आदमी ना भेजो। लोगों ने इसका ये मुतालबा तस्लीम कर लिया, और इसके साथ हलीफों में से 2 आदमी और बनी मालिक में से 3 आदमी लगाए। इस तरह कुल 6 आदमियों का वफद तैयार हो गया। इस वफद में हजरत उस्मान बिन अबी लास सकफी भी थे, जो सबसे ज्यादा कम उम्र थे। जब ये लोग खिदमत नबवी में पहुंचे, तो आपने इनके लिए मस्जिद के एक गोशे में कुब्बा लगवा दिया ताकि ये कुरान सुन सकें और सहाबा कराम को नमाज पढ़ते हुए देख सकें। फिर ये लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते जाते रहे, और आप इन्हें इस्लाम की दावत देते रहे। आखिर इनके सरदार ने सवाल किया कि आप अपने और सकीफ के दरमियान एक माहिदा सुलह का लिख दीजिए जिसमें जिनाकारी, शराब नोशी और सूदखोरी की इजाज़त हो। नोट करिएगा, उस दौर में भी लोग ऐसे मुतालबे करते थे कि ठीक है, रहे इस्लामी, लेकिन मर्जी की हमारी बातें, हमारी मर्जी का इस्लाम पेश करेंगे हम। अब इनके माबूद लात को बरकरार रखा जाए, इन्हें नमाज से माफ रखा जाए, और इनके बुत खुद इनके हाथों से ना तुड़वाए जाएं। लेकिन रसूलुल्लाह ने इनमें से कोई भी बात मंजूर ना की। अमल का नुक्ता वाज़ है, अल्हम्दुलिल्लाह। لہٰذا انہوں نے تنہائی میں مشورہ کیا، مگر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرنڈر کرنے کے سوا کوئی تدبیر نظر نہ آئی. کیا پتہ چلا کہ سٹرانگ لیڈرز غلط چیزوں پہ اوکے نہیں کہتے، ٹیک اے سٹینڈ. آخر انہوں نے یہی کیا اور اپنے آپ کو اللہ کے نبی کے حوالے کرتے ہوئے اسلام قبول کیا. البتہ یہ شرط لگائی کہ لات کو ڈھانے کا انتظام آپ خود فرما لیں، سکیف اسے اپنے ہاتھوں سے ہرگز نہ ڈھائیں گے. آپ نے یہ شرط منظور کر لی. یہاں دیکھیے کہ جب اس میں کوئی حرج نہیں تھا تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، اس بات کو ضد نہیں بنایا کہ نہیں تم اپنے ہاتھوں سے کرو. دین کے اندر شدت نہیں ہونی چاہیے اور لیڈرز کو موقع محل کے مطابق اپنی چیزوں کو دوبارہ ری تھنک کے حساب سے کرنا چاہیے. خیر، آپ نے ایک شرط بھی منظور کی، ایک خط لکھا اور عثمان بن ابی العاص ثقفی کو ان کا امیر بنایا، یعنی لیڈر بنایا، کیونکہ وہی اسلام کو سمجھنے اور دین اور قرآن کی تعلیم حاصل کرنے میں سب سے زیادہ پیش پیش اور حریص تھے. یہاں بھی پتہ چلا کہ کس کو بڑا بنایا جائے جو سب سے زیادہ جاننے والا ہو. اس کی وجہ یہ تھی کہ وفد کے ارکان ہر روز صبح خدمت نبوی میں حاضر ہوتے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، لیکن عثمان بن ابی العاص کو اپنے ڈیرے پر چھوڑ دیتے. اس لیے جب وفد واپس آ کر دوپہر میں کیلولہ کرتا تو عثمان بن ابی العاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر قرآن پڑھتے اور دین کی باتیں پوچھتے. پھر جب آپ کو آرام کرتا ہوا پاتے تو اسی مقصد کے لیے پھر ابو بکر کی خدمت میں چلے جاتے. عثمان بن ابی العاص کی گورنری بڑی بابرکت ثابت ہوئی. دیکھیے، اتنا شوق تھا سیکھنے کا کہ جب اللہ کے نبی آرام کرتے تو ابو بکر سے جا کے سیکھنے لگتے. تو اللہ نے ان کے اس لیڈرشپ میں اور ان گورنری سے مراد یہ کہ آپ کو بڑا بنایا گیا، اس میں برکت دی. تو کیا پتہ چلا کہ ہمیشہ سیکھنے کا شوق ہونا چاہیے. رسول اللہ کی وفات کے بعد جب خلافت صدیقی میں ارتداد کی لہر چلی اور ثقیف نے بھی مرتد ہونے کا ارادہ کیا تو انہیں عثمان بن ابی العاص نے مخاطب کر کے کہا، ثقیف کے لوگوں، تم سب سے آخر میں اسلام لائے ہو، اس لیے سب سے پہلے مرتد نہ ہونا. نوٹ کیجئے گا، یہ ہے اصل میں آزمائش. لیڈر کے ہٹتے ہی ارتداد شروع. اور یہ اتنا بڑا فتنہ تھا کہ ابو بکر صدیق جیسے کمزور شخص کے لیے ایک بہت بڑی امتحان گاہ بن گئی. یہ ثقیف کے لوگ جن کا اوپر ذکر پڑھ رہے ہیں یہی مرتد ہونے لگے تو عثمان بن العاص نے روک لیا. اس سے چلتا ہے کہ اچھے لوگ ہوں تو وہ مائنڈ چینج کرنے والوں یا پلٹنے والوں کو واپس رغبت دلا کر موٹیویٹ کرتے ہیں اور پھر اس سے فائدہ ہوتا ہے. کیا ہوا؟ یہ سن کر لوگ ارتداد سے رک گئے اور اسلام پر قائم رہے. بہرحال وفد نے اپنی قوم میں جا کر اصل حقیقت چھپائے رکھی اور قوم کے سامنے لڑائی اور مار دھاڑ کا حوا کھڑا کیا اور حزن و غم کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ اللہ کے نبی نے ان سے مطالبہ کیا ہے کہ اسلام قبول کر لیں اور زنا، شراب اور سود چھوڑ دیں، ورنہ سخت لڑائی کی جائے گی. یہ سن کر پہلے تو ثقیف پر جاہلیت کا جو ایک کہہ لیجیے حمایتی پن تھا وہ غالب آیا. وہ 2-3 روز تک لڑائی ہی کی بات سوچتے رہے کہ چلے پھر ہم جا کے لڑتے ہیں مسلمانوں سے. لیکن پھر اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور انہوں نے وفد سے گزارش کی کہ وہ پھر رسول اللہ کے پاس واپس جائے اور آپ کے مطالبہ تسلیم کر لے. اس مرحلے پر پہنچ کر وفد نے پھر اصل حقیقت ظاہر کی اور جن باتوں پر صلح ہو چکی تھی ان کا اظہار کیا تو سکیف نے اسی وقت پھر اسلام قبول کر لیا. اس میں بھی سیکھنے کی باتیں ہیں بہت ساری. جب تک پوری طرح دل اندر نہیں ہوتا نا تو انسان بات چاہے سچ ہی کہہ رہا ہوتا ہے لیکن ادھورا سچ بولتا ہے. اور ایک جملہ لکھ لیں، ادھورے سچ جھوٹ سے بھی زیادہ بڑی تباہی مچاتے ہیں کبھی کبھی. خیر، یہ جب مسلمان ہوئے تو اب اگلا مرحلہ تھا کہ لات کو ڈھایا جائے. اللہ کے نبی نے خالد بن ولید کی سرکردگی میں، یعنی ان کو لیڈر بنایا، چند صحابہ کا ایک چھوٹا سا گروپ دیا. تو مغیرہ بن شعبہ نے کھڑے ہو کر گرز اٹھایا، یعنی کہہ لیجئے گرز کو آپ گز کہہ لیجئے، ہینٹر، ڈنڈا، اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ واللہ ہی میں ذرا آپ لوگوں کو سکیف پر ہنساؤں گا، یعنی طبیعت میں مذاق تھا. خیر، کیا کیا، لات پر وہ ڈنڈا مارا اور خود ہی گر پڑے اور ریڑیاں پٹکنے لگے. یہ بناوٹی منظر دیکھ کر اہل طائف پر ہول تاری ہو گیا. کہنے لگے اللہ مغیرہ کو ہلاک کرے، اسے دیوی نے مار ڈالا. ظاہر ہے کہ مشرکوں کو لگتا تھا یہ مری دیوی ہے، تو اب دیوی پہ جب کسی نے گرز چلایا تو گویا کہ ان کے خیال دیوی نے اس پہ اپنا وبال ڈال دیا. اتنے میں حضرت مغیرہ اچھل کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اللہ تمہارا برا کرے، یہ تو پتھر اور مٹی کا تماشا ہے. پھر انہوں نے دروازے پر ضرب لگائی اور اسے توڑ دیا. اس کے بعد سب سے اونچی دیوار پر چڑھے اور ان کے ساتھ کچھ اور صحابہ بھی چڑھے. پھر اسے ڈھاتے ڈھاتے زمین کے برابر کر دیا. हत्ता कि इसकी बुनियाद भी खोद डाली और इसका जेवर और लिबास निकाल लिया। ये देखकर सकीफ दम बखुद रह गए, हैरान हो गए कि हमारी देवी या हमारा खुद साख्ता कह लीजिए कि जो माबूद था वो तो कुछ भी नहीं कर सका। हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु जेवर और लिबास लेकर अपनी टीम के साथ वापस हुए और रसूलुल्लाह ने सब कुछ उसी दिन तकसीम फरमा दिया और नबी की नुसरत और दीन के एजाज़ पर अल्लाह की हम्द की। तो कितना कुछ है सीखने का। पता क्या चला कि आपने अमली इकदाम किए। आज हम अभी तक ना पाक कर सके उन चीज़ों से जिसके ऊपर आज भी लोग जमे हुए हैं, तो क्या पता चला कि फतह मक्का ऐसे ही नहीं पूरी हो गई। आपने वही हदीस के बुराई को हाथ से रोको, जुबान से रोको, दिल में बुरा को, तो जिन चीज़ों को आप अपनी हाथ से ख़त्म कर सकते थे आपने किया। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि वो हमें नबी सल्लम जैसी हिकमत फहम अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। इंशाल्लाह आप यहाँ रुक जाते हैं। अल्लाह ताला आपके
इंशाल्लाह
मेरे वक्त में बरकत दे। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।